SBS Audio is supported by advertising.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.
रीना जी, सबसे पहले तो आपका SBS हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को सबसे पहले ये बताएं कि आप आयुर्वेद से किस तरह से जुड़ी हुई हैं।
जी, मैं एक आयुर्वेद स्नातक हूँ। मैंने BAMS डिग्री की है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया पंचकर्मा में तिलक आयुर्वेदिक कॉलेज पुणे से। उसके बाद मैंने योगा में भी एक कोर्स किया हुआ है और बहुत सारी और CMAs और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज भी मैंने अटेंड की हुई है, जिनमें कुछ कॉन्फ्रेंसेस में मैं कीनोट स्पीकर भी रही हूँ। और 24 इयर्स से मैं आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रही हूँ और प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करती हूँ। इवन कोविड में भी मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन से ही पेशेंट्स को ठीक किया।
जी, तो रीना जी, जैसा कि आपने बताया कि 24 साल से आप इस पेशे में हैं, तो ऐसे में आयुर्वेद से जुड़ी खूब सारी मिथ्स हमें सुनने को मिलती हैं। ये ऐसी बातें हैं जो लोग कहते हैं पर किसी को पता नहीं है कि ये सच है या गलत है, तो आज हम आपसे इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद और वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम यानी पश्चिमी चिकित्सा पद्धति में क्या अंतर है।
आयुर्वेद आयु का वेद है। आयुर्वेद आपको सिखाता है आपको सोसाइटी में कैसे रहना है, आचार रसायन सिखाता है। आयुर्वेद आपको डाइटरी गाइडलाइंस देता है, लाइफस्टाइल की गाइडलाइंस देता है, जिससे आपको बीमारी ही ना हो। तो आयुर्वेद तो आयु का वेद है, आपके जीवन का वेद है। इसका वेस्टर्न सिस्टम से कंपैरिजन करना बनता ही नहीं है। वेस्टर्न सिस्टम सिर्फ मेडिसिन का सिस्टम है और आयुर्वेद आपके मानसिक संतुलन को भी बनाने में आपकी मदद करता है। हम एक व्यक्ति को तभी स्वस्थ कहते हैं जब उसका शरीर तो स्वस्थ हो ही, उसका मन भी स्वस्थ हो, तभी हम उसकी एक स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा है ये। तो इसलिए आयुर्वेद आयु का वेद है, उसका वेस्टर्न सिस्टम से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि रूटीन में जो आपको करना चाहिए, जो आपको खाना चाहिए, अगर आपकी एज चेंज हो गई है, मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगी। मान लीजिए आपको मेनोपॉज हो गया है तो आपको क्या चेंजेस करने चाहिए, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस हो गए हैं तो आपकी डाइट और लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए। जैसे मैं पंचकर्मा में प्रैक्टिस करती हूँ, हम यहाँ सारी थेरेपीज़ करवाते हैं, रिजुविनेशन के लिए भी, ट्रीटमेंट के लिए भी और वैसे हेल्दी रहने के लिए भी। तो वो ट्रीटमेंट्स आपको कब लेने चाहिए, क्यों लेने चाहिए, ये सब आयुर्वेद बताता है। वो जरूरी नहीं आपको कोई बीमारी है आप तभी लीजिए, आप प्रिवेंशन के लिए भी वो ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट जो है आयुर्वेद का बहुत इम्पॉर्टेंट है। आयुर्वेद की परिभाषा यही है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम्। यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए और रोगी के रोग को दूर कैसे किया जाए। तो इसलिए जो फर्स्ट पार्ट है वो आयुर्वेद की ब्यूटी है। तो इसलिए इसका वेस्टर्न सिस्टम से कंपैरिजन ना करें तो बेहतर है। इसको सभी को अपनाना ही चाहिए एक अच्छे जीवन के लिए। और एक चीज और मैं ऐड करूंगी इसी में, आजकल इतना क्राइम रेट बढ़ रहा है, इतना एंगर है यंग जनरेशन में भी, ये सब चीजें अगर हम आचार रसायन का प्रसार करें जिसमें बताया गया है कि आप कभी झूठ ना बोले, किसी की कभी चोरी ना करें, कभी चुगली ना करें, हिंसा ना करें किसी के साथ, और अगर कोई व्यक्ति सक्सेसफुल है तो आप उसकी मेहनत से जेलसी करें ना कि उसके रिजल्ट से, यानी आप भी उतनी मेहनत करें। तो ये चार पांच चीजें भी अगर हर व्यक्ति अपनी लाइफ में ले आए तो मुझे लगता है ये पूरी दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। तो इसलिए ये जीवन का वेद है, इसको सबको फॉलो करना चाहिए।
जी, तो रीना जी, जैसा कि आपने बताया कि ये सिर्फ एक मेडिकल सिस्टम ही नहीं बल्कि एक पूरी जीवन शैली है, ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसे में एक और बात हमें सुनने में आती है कि आयुर्वेद केवल उन लोगों के लिए है जो शाकाहारी यानी वेजिटेरियन होते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है?
ये भी एक मिथ है। आयुर्वेद में राजयक्ष्मा चिकित्सा अधिकारी जो TB है उसमें आयुर्वेद में भी मांस खाना बताया गया है, और जो लोग मांस नहीं खाते हैं उनको जुगुप्सा विधि से मांस खिलाने के लिए बताया गया है। यानी उनको बिना बताए किसी न किसी तरह से खिलाइए ताकि उनका जो मसल लॉस हो रहा है, जो वेट लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा, वो रिकवर कर सके। वाजीकरण चिकित्सा में भी ये बताया गया है, ये वाजीकरण या जो सेक्स टॉनिक्स होती हैं मेल्स को जो बूस्ट करने के लिए होती हैं, ये चीजें उसमें भी बताई गई हैं। तो ये एक मिथ है कि सिर्फ वेजिटेरियंस के लिए आयुर्वेद। आयुर्वेद में भी नॉन वेज वर्णित है और पर्टिकुलर कुछ चिकित्सा अधिकार हैं जिनमें नॉन वेज वर्णित किया गया है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वेजिटेरियंस के लिए है।
जी, तो रीना जी, क्योंकि आज हम विशेष तौर से मिथ्स के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे में सोशल मीडिया पर भी ऐसी खूब सारी मिथ्स और गलत धारणाएं होती हैं जो लोगों को नहीं पता होता कि सच है या नहीं। तो आयुर्वेद से जुड़ी कुछ ऐसी मिथ्स अगर आप हमें बता सकें।
जी, आयुर्वेद से इससे जुड़ी मैं ये मिथ्स कुछ बताती हूँ आपको। हर एक व्यक्ति सोशल साइट्स पे रील्स डाल रहा है बिना किसी क्वालिफिकेशन के। कोई बोलता है जीरे का पानी पियो, कोई बोलता है धनिया का पानी पियो। मैं एक एक चीज के बारे में बताऊंगी। कोई बोलता है एलोवेरा पियो डेली। एलोवेरा इज वेरी गुड, उसका कोई नुकसान नहीं, बट जिनको पीरियड्स ज्यादा होते हैं या मेनोरेजिया की प्रॉब्लम है उनको और ज्यादा ब्लीडिंग होगी। प्रेग्नेंट लेडीज को एलोवेरा कभी नहीं पीना चाहिए, अबॉर्शन तक हो सकता है, क्योंकि पीरियड्स इंड्यूस करने के लिए हम एलोवेरा देते हैं। और दूसरी बात, कुछ लोग डेली नीम का पानी पीते हैं। वायु बढ़ती है नीम के पानी से। आयुर्वेद एक पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। जैसे कि मैं किसी भी सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, एलोपैथी में कोई भी व्यक्ति अगर फीवर हो तो पैरासिटामोल ले सकता है। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। पहले हम व्यक्ति की नाड़ी देखते हैं, उसके बाद उसकी हिस्ट्री लेते हैं, क्योंकि 7 प्रकार की प्रकृति वर्णित है आयुर्वेद में। वात पित्त कफ, ये 3 दोष हैं। तो वात पित्त कफ, वात पित्त पित्त कफ और वात पित्त और वात पित्त कफ, ये 7 प्रकार की प्रकृति है। ये डायग्नोज करते हैं हम पहले कि आपकी प्रकृति कौन सी है, उसके अकॉर्डिंगली हम दवाई मेंशन करते हैं। एलोपैथिक एंटीबायोटिक कई बार लोग लेते हैं, कईयों को डायरिया हो जाता है, कईयों को गर्मी हो जाती है, नोजिया हो जाता है। तो ये इसीलिए है आयुर्वेद में, क्योंकि अगर पित्त प्रधान व्यक्ति है तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ ठंडा हम साथ में ऐड करते हैं, ठंड कुछ ना कुछ कूलिंग पोटेंसी वाली मेडिसिन्स, और उनकी मेडिसिन्स भी पूरी चेंज हो जाती हैं। तो ये डिफरेंस है आयुर्वेद में और एलोपैथी में। और ये जो मिथ्स हैं, एक दो और मैं डिस्कस करूंगी यहाँ पे। नीम के पानी की मैं बात कर रही थी कि वो वायु बढ़ाता है। अगर आपको बॉडी में पेन्स है और आप सोशल साइट्स को देखकर डेली नीम का पानी पी रहे हैं, तो आपकी वायु बढ़ने से आपका पेन और बढ़ सकता है। इसलिए सोशल साइट्स या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्लीज मेडिसिन को फॉलो मत कीजिए। मेडिसिन ही है ये हर्ब्स हमारी, और किसी क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलके ही कुछ ना कुछ स्टार्ट कीजिए, ऐसे मत कीजिए। क्योंकि पता नहीं आपको उस चीज की जरूरत भी है कि नहीं, आप अपने आप को वैसे ही टॉर्चर कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो लोग बोलते हैं कि आप बहुत पानी पीजिए बहुत पानी पीजिए, क्या एक गर्मी में और धूप पे काम करने वाले मजदूर की और एक एसी में बैठने वाले आईटी प्रोफेशनल की वाटर की नीड सेम होगी? नहीं। तो ये पर्सनलाइज्ड सिस्टम है। आप कैसे कह सकते हैं कि 8 गिलास पानी पीजिए, 4 लीटर पानी पीजिए, इतना पानी पीजिए? जब आपकी बॉडी डिमांड करे तब आप पानी पीजिए। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल दूंगी कि जैसे धनिया का पानी लोग अपने आप पीना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा ठंडा है धनिया का पानी, जिनको पेन्स हैं बढ़ जाती है, पूरी बॉडी उनकी जकड़ जाती है, तो वो उनको समझ नहीं आएगा वो क्यों हो रहा है। वो सोचेंगे मैंने तो कुछ करा ही नहीं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये दवाइयां हैं, इनको ऐसे ही मत कीजिए कि हर्ब्स हैं लेते जाओ कोई नुकसान नहीं। ऐसे नहीं होता। अगर उसका मेडिसिनल इफेक्ट है और बिना जरूरत के गलत तरीके से ले रहे हैं तो कोई ना कोई नुकसान भी आपको कर सकती है। तो इसलिए अंडर डॉक्टर सुपरविजन लीजिए इसको। हल्दी वाला दूध बच्चों को पिलाते हैं लोग अक्सर, फोर्स कर करके भी पिलाते हैं, उससे कई बार कंसेप्शन में बहुत प्रॉब्लम आती है फिर। तो जब जरूरत है तब लें तो ज्यादा बेटर है, या बीच बीच में छोड़िए। ऐसा एक मिथ और है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में हैवी मेटल्स होते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो रस औषधियां हैं, ये जो भस्में हैं आयुर्वेद की, उनकी प्रॉपर प्रोसेसिंग होती है, नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं वो जितने भी ये भस्में हैं, और उनकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होती है बॉडी में। तो उनको लेने में कोई भी हार्म नहीं है, अगर किसी क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर आप ले रहे हैं। जब वो मेडिसिन की फॉर्म में आती है मार्केट में, उसके बाद मेटेलिक कंटेंट तो उसमें रहता ही नहीं है। आप टेस्ट करवा सकते हैं इसको, बहुत सारे रिसर्च स्टडीज हो चुकी हैं। इसलिए ये मिथ भी मैं चाहूंगी आपके माध्यम से पब्लिक का दूर हो कि ये भस्में और ये रस औषधियां जो हैं इनमें हैवी मेटल्स हैं। ये कुछ ना कुछ आप अगर अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रखेंगे तो ये जो चीजें हैं आपको बहुत ज्यादा फायदा करेंगी। और इनसे आपको ये जो मिथ्स हैं कि इसका ये बेनिफिट्स है, ये बेनिफिट्स है, कि किसी भी रील्स को या किसी भी उसको ऐसे फॉलो मत कीजिए जब तक किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की रील नहीं है तब, क्योंकि कोई भी डॉक्टर ऐसे रिकमेंड नहीं करेगा बिना पेशेंट के लिए।
रीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस संदर्भ में जानकारी दी। एक चीज पूछना चाहूंगी, एलोपैथिक इलाज लेना है या आयुर्वेदिक उपचार की ओर जाना है, ये तो सबका व्यक्तिगत एक निर्णय होता है, लेकिन क्योंकि आप इस पेशे में हैं तो तो अन्य चिकित्सा उपचारों के बजाय आयुर्वेद की ओर क्यों जाना चाहिए? मैं चाहूंगी कि आप अपने अनुभव से बताएं।
आयुर्वेद में पेशेंट को इसलिए जाना चाहिए, कई बार आपकी बीमारी बहुत छोटी सी है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। एक पेशेंट आया था मेरे पास, उसको पेन थी पेट में बहुत ज्यादा। एलोपैथिक में वो सब कुछ कर चुका था। उसके बाद नेक्स्ट डे सीटी स्कैन होना था, तो मेरे पुराने पेशेंट थे। उन्होंने सोचा कि एक बार मैडम को मिल लेते हैं। मेरे ख्याल 1 या 2 दिन की मेडिसिन में वो परमानेंटली ठीक थे। उनका रिव्यू भी है मेरे गूगल के पेज पर, आप देख सकते हैं। गूगल डॉक्टर लीना अरोड़ा आयुर्वेदिक क्लिनिक का मेरा एक पेज है। तो वो एक डोज से ठीक। मैंने किया क्या था मैं बताना चाहूंगी। उसका पित्त बड़ा हुआ था, मैंने पित्त को शांत किया, वो ठीक हो गया। तो इसी तरह से अगर कोई बीमारी बहुत बड़ी नहीं है और एक पेशेंट अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा, एक ये भी मिथ है आयुर्वेद मेडिसिन कॉस्टली होती है, ऐसा नहीं है। सभी मेडिसिन कॉस्टली नहीं होती है, कुछ रीजनेबल कॉस्ट में भी है। तो अगर आपकी बीमारी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, तो सारी टेस्टिंग और वो सारे टॉर्चर से अगर आपको ना गुजरना पड़े और आप मान लो 1 हफ्ते में कुछ रीजनेबल अमाउंट में ठीक हो रहे हैं और आपको लाइफ लॉन्ग एक डाइट की और लाइफस्टाइल की एडवाइस मिल रही है, मुझे लगता है कि आपको हर बीमारी के लिए पहले आयुर्वेद को अप्रोच करना चाहिए। मैं मानती हूँ एलोपैथिक में आप सर्जरी के लिए जाइए, बहुत जो बड़ी बड़ी सर्जरीज हैं वो उनकी स्पेशलिटी है, उसके लिए जाइए आप। बट कोई भी बीमारी अगर हो तो आयुर्वेद में जरूर जाइए, क्योंकि आपको लाइफ लॉन्ग जीवन शैली का पता लग जाएगा कि आपको खाना क्या चाहिए, आपको रहना कैसे चाहिए, आपको सोसाइटी में क्या करना चाहिए। हम यहाँ पर पंचकर्मा थेरेपीज करते हैं, पूरा बॉडी का अभ्यंग यानी मसाज, शिरोधारा फॉर रिलैक्सेशन ऑफ ब्रेन, पूरी बॉडी के टॉक्सिन निकलते हैं जो हम बॉडी की मसाज करवाते हैं। स्टीम थेरेपी है, आईज के लिए अक्षी तर्पण करते हैं, घुटनों के लिए जानुवस्थी करते हैं, बैक के लिए कटिवस्थी करते हैं, सर्वाइकल के लिए ग्रीवावस्थी करते हैं। तो जो लोग कहते हैं मुझे दवाई नहीं लेनी, वो ये थेरेपीज करवा के काफी हद तक उनको बेनिफिट हो सकता है। और ये जो मैंने आपको बताया, जैसे कि मैं आज आपके साथ जुड़ी हूँ, ऐसे ही मेरे काफी सारे प्रोग्राम्स इंडिया में भी ऑल इंडिया रेडियो पर, डीडी नेशनल पर आते हैं। अगर कुछ कोई सुनना चाहे तो मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर रीना अरोड़ा, उस पर उनको सुन सकते हैं। और आयुष मिनिस्ट्री से भी मुझे 20,000 का फर्स्ट प्राइज मिला था आर्टिकल राइटिंग कॉम्पिटिशन में।
अरे
ये
वाह,
आर्टिकल है, जी धन्यवाद, डायबिटीज मैनेजमेंट के, प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज एंड मैनेजमेंट, ये गूगल पे अवेलेबल है आयुष मिनिस्ट्री की साइट पे बाय डॉक्टर रीना अरोड़ा। तो जो लोग भी परामर्श लेना चाहें मेरे से, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे मैं कंसल्टेशन देती हूँ, वो ले सकते हैं आयुर्वेद जीवन शैली को जानने के लिए। आपका दिनचर्या, आपके ऋतुचर्या, आपका खान पान, ये सब कैसा होना चाहिए इसके लिए, और कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए भी आयुर्वेद में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे फॉलिंग ऑफ हेयर्स है, ग्लो ऑफ फेस है, स्ट्रेस है, या एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स है, तो ये इनफर्टिलिटी है। ये कॉमन कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सिंपल ट्रीटमेंट से आप ठीक हो सकते हैं।
रीना जी, मैं आखिरी चीज आपसे यही पूछना चाहूंगी कि पहले के तुलना में अगर हम अब देखें तो ऑस्ट्रेलिया और बाहर की बाकी देशों में भी योगा हो गया, आयुर्वेद हो गया, इनका प्रचलन अब दोबारा से वापस आ रहा है, जो भी ट्रेडिशनल हमारी प्रैक्टिसेस हैं। ऐसे में अगर
जी
कोई भी और प्रासंगिक या महत्वपूर्ण जानकारी आप यहाँ के लोगों से साझा करना चाहें जिन्हें आयुर्वेद के बारे में इतना नहीं पता है, तो आप कर सकती हैं।
ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि लोगों को अब समझ आ चुकी है कि ये जीवन शैली के तरीके हैं। योगा आप कीजिए, देखिए आप कितना शरीर सुबह सबका स्टिफ हुआ होता है। अगर आप 15-20 मिनट भी योगा कर लें, आपके पास टाइम नहीं है, सारा दिन आप एनर्जेटिक रहेंगे, आपका दिल करेगा काम करने का। ऐसे ही अगर आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली आप, जैसे आयुर्वेद में बोलते हैं बासी खाना नहीं खाना, बिल्कुल फ्रेश खाना है, और जितना जैसे अब इंडिया में बहुत पीक गर्मी है इस टाइम, तो ग्रीष्म ऋतुचर्या वर्णित है आयुर्वेद में आपको क्या खाना चाहिए। अगर आप वो कूलिंग डाइट्स लें तो आपको इतनी गर्मी लगेगी नहीं, और ऐसे ही वर्षा ऋतु आएगी इसके बाद उसका अलग डाइट है, लाइफस्टाइल है, तो ये सब चीजें अगर आप फॉलो करें तो आप काफी हद तक स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया वाले भी अपने भाई बहनों से मैं ये गुजारिश करूंगी कि आयुर्वेद को अपने लाइफ में लाइए, ताकि आप स्वस्थ रह सके, खुश रह सके। धन्यवाद
जी रीना जी,
भव्या
आपका
जी,
SBS हिंदी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भव्या जी।
इस अंश में प्रस्तुत की गई सभी जानकारी सामान्य है और स्वास्थ्य संबंधित किसी भी निर्णय से पहले आप अपने निजी GP से संपर्क जरूर करें। SBS न्यूज के लिए इस खबर को आप सबके सामने प्रस्तुत किया भव्या पांडे ने।
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.